नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में सांसदों के लिए 184 बहुमंजिला फ्लैटों का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने इसे एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना का प्रतीक बताया। बिहार में संशोधित मतदाता सूची और अन्य मुद्दों पर संसद में गतिरोध जारी। भाजपा ने झूठ फैलाने और चुनावी प्रक्रिया के खिलाफ निराधार आरोप लगाने के लिए कांग्रेस की आलोचना की। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने कहा, ऑस्ट्रेलिया सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिलिस्तीन को देश के रूप में मान्यता देगा। और मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में बाबा खड़क सिंह मार्ग पर सांसदों के लिए नवनिर्मित 184 टाइप 7 बहुमंजिला फ्लैटों का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी का भारत अपनी जिम्मेदारियों के प्रति संवेदनशील है और विकास के लिए आकांक्षी है। उन्होंने कहा कि 2014 के बाद अब तक सांसदों के लिए लगभग 350 नए फ्लैटों का निर्माण किया गया है।
सांसद आवास की कमी होने के बावजूद 2004 से लेकर 2014 तक लोकसभा सांसदों के लिए एक भी नए आवास का निर्माण नहीं हुआ था। इसलिए 2014 के बाद हमने इस काम को एक अभियान की तरह लिया। 2014 से अब तक इन फ्लैट्स को मिलाकर करीब 350 सांसद आवास बनाए गए हैं।
श्री मोदी ने कहा कि विभिन्न राज्यों के सांसद इन आवासों में एक साथ रह सकेंगे। ये एक भारत श्रेष्ठ भारत के दृष्टिकोण का परिचायक है।
आज मेरे आपसे कुछ आग्रह भी है। यहाँ देश के अलग अलग राज्यों और क्षेत्रों के सांसद एक साथ रहेंगे। आपकी उपस्थिति यहाँ एक भारत श्रेष्ठ भारत का प्रतीक बनेगी। हर प्रांत के पर्व त्योहारों का समय समय पर सामूहिक आयोजन होगा तो इस परिसर को चार चांद लग जाएंगे।
प्रधानमंत्री ने कहा कि चार टावरों का नाम देश की महान नदियों के नाम पर दिया गया है। करोड़ों लोगों की जीवन दायिनी ये चार नदियां कृष्णा, गोदावरी, कोसी और हुगली हैं। उन्होंने कहा कि नदियों के नामकरण की परंपरा राष्ट्र को एकता के एक सूत्र में बांधती है। श्री मोदी ने आशा व्यक्त की कि सभी सांसद एक टीम के रूप में एक साथ कार्य करेंगे। समेकित प्रयास राष्ट्र के लिए आदर्श बनेंगे। इन नए आवासों का एक महत्वपूर्ण आर्थिक पहलू भी है। हाल ही में कर्तव्य भवन के उद्घाटन के बाद उन्होंने कहा था कि किराए के भवनों से संचालित कई मंत्रालयों ने वार्षिक किराए के तौर पर लगभग 1,500 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सांसदों के लिए पर्याप्त आवास की कमी सरकारी खर्च में वृद्धि का कारण बन रही थी। श्री मोदी ने इन फ्लैटों के निर्माण में शामिल सभी इंजीनियरों और श्रमिकों की भी सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अनदेखी के कारण पुराने आवासों को प्राय नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि सांसदों को अपने पुराने आवासों की खराब स्थिति के कारण बार बार कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।
पुराने आवास जिस तरह बदहाली का शिकार होते थे, सांसदों को जिस तरह आए दिन परेशानियों का सामना करना पड़ता था, नए आवासों में गृह प्रवेश के बाद उससे मुक्ति मिलेगी। सांसद साथी अपनी समस्याओं से मुक्त रहेंगे तो वो अपना समय और अपनी ऊर्जा और बेहतर तरीके से जनता की समस्याओं के समाधान में लगा पाएंगे।
आवासीय परिसर सांसदों की कार्यात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आधुनिक सुविधाओं की पूरी श्रृंखला से सुसज्जित है। बिहार में संशोधित मतदाता सूची और अन्य मुद्दों पर संसद में आज भी गतिरोध देखने को मिला। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी दलों के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक के लिए पहले स्थगित कर दी गई। राज्यसभा की कार्यवाही आज सुबह जब 11 बजे शुरू हुई तो उपसभापति हरिवंश ने शून्यकाल चलाने की कोशिश की, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण और अन्य मुद्दे उठाए। उन्होंने कहा कि उन्हें 5 विभिन्न मुद्दों पर विभिन्न राजनीतिक दलों से 29 स्थगन नोटिस मिले, जिनमें से 18 ऐसे मामले हैं जो न्यायालय में विचाराधीन हैं। इस बीच हंगामा जारी रहने के कारण उपसभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। उधर लोकसभा में भी इसी प्रकार के दृश्य देखने को मिले। सदन की कार्यवाही जब सुबह 11 बजे शुरू हुई तो विपक्षी सदस्यों ने विशेष गहन पुनरीक्षण के मुद्दे पर चर्चा की मांग के समर्थन में विरोध शुरू कर दिया। इसे देखते हुए अध्यक्ष ने लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। इस बीच दोनों सदनों की कार्यवाही जारी है। भारतीय जनता पार्टी ने देश में निर्वाचन प्रक्रिया के विरुद्ध आधारहीन आरोप लगाने और झूठ फैलाने के लिए कांग्रेस को दोषी ठहराया है। नई दिल्ली में आज एक संवाददाता सम्मेलन में केंद्रीय शिक्षा मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण की प्रक्रिया देश में पहली बार नहीं हो रही है।
एसआईआर पहली बार नहीं हो रहा है। हर एक राज्य में राष्ट्रीय स्तर पे चुनाव आयोग की एक नियमित प्रक्रिया है मतदाता सूची को व्यवस्थित करने के लिए। कांग्रेस पार्टी पहले ईवीएम के ऊपर झूठ बोलते हैं, कभी महाराष्ट्र की बात उठाते हैं, कभी हरियाणा की बात उठाते हैं, झूठ की वो एक नया पहाड़ बनाते हैं।
इस बीच विपक्षी सांसदों ने आज बिहार में मतदाता सूची के पुनरीक्षण के विरुद्ध संसद भवन परिसर से निर्वाचन आयोग कार्यालय तक एक विरोध मार्च निकाला। सांसद इसे वापस लेने की मांग कर रहे थे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी नेता राहुल गांधी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट के प्रमुख शरद पवार, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव, झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता महुआ मांझी, तृणमूल कांग्रेस सांसद डेरेक ओब्रायन सहित अन्य नेताओं ने इस दर्शन में हिस्सा लिया। इस बीच संसद के कई विपक्षी सदस्यों ने विरोध के दौरान बैरिकेड से छलांग लगाने की कोशिश की। कानून व्यवस्था बनाए रखने के प्रयास में दिल्ली पुलिस ने कुछ सांसदों को हिरासत में ले लिया। संवाददाताओं से बातचीत में दिल्ली पुलिस के उपायुक्त देवेश कुमार महला ने कहा कि निर्वाचन आयोग ने अपने पास आने के लिए सिर्फ 30 सांसदों को अनुमति पत्र जारी किया था।
इलेक्शन कमीशन इनके जाने का मुद्दा था। इलेक्शन कमीशन से हम कंटिन्यूस कोऑर्डिनेशन में थे। इलेक्शन कमीशन ने एक रिटर्न लेटर कल भी दिया था, आज भी एक ईमेल उन्होंने भेजी थी। कोई भी 30 लोग पार्टी के इकट्ठे होकर इलेक्शन कमीशन जा सकते हैं। इलेक्शन कमीशन उनसे बात करना चाहता था, लेकिन 200 के लगभग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मार्च करते हुए जब आए तो उनकी सुरक्षा की दृष्टि से और लॉ एंड ऑर्डर दृष्टि से उनको रोका गया, बैरिकेड लगा के उनको डिटेन किया गया वहां पे। लेकिन फिर भी वो जब नहीं माने, उनसे काफी रिक्वेस्ट की गई तो उन लोगों को डिटेन किया गया।
संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने निर्वाचन आयोग और सर्वोच्च न्यायालय जैसे संवैधानिक प्रतिष्ठानों की छवि धूमिल करने का आरोपी विपक्ष को ठहराया है। श्री रिजिजू ने कहा कि हालांकि निर्वाचन आयोग ने 30 विपक्षी सांसदों को अपनी चिंताओं से अवगत कराने के लिए चुनाव पैनल के साथ बैठक करने की अनुमति दी है। भाजपा सांसद अरुण सिंह ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि विपक्षी दलों को लोकतंत्र में विश्वास नहीं है।
संवैधानिक संस्था पे लगातार आक्रमण करने का काम यही विपक्ष का एक रवैया रह गया है। लोकतंत्र पे विश्वास रखते नहीं है। बार बार चुनाव आयोग ये कह रहा है कि किस प्रकार से आप गलत आरोप लगा रहे हैं, कोई इशू नहीं है। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत आगे बढ़ रहा है, वहीं दूसरी ओर अनावश्यक मुद्दा उठा करके जो तथ्य से परे है संसद को बार बार बाधित करना, यह जनहित में नहीं है, लोकतंत्र के खिलाफ है।
ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज कहा कि भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL और अग्रणी वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनियों के बीच सहयोग, कुशल और भविष्य के लिए तैयार टेलीकॉम कार्यबल निर्मित करने में एक महत्वपूर्ण कदम है। श्री सिंधिया ने नई दिल्ली में डिजिटल कौशल पहल के लिए एरिक्सन, क्वालकॉम, सिस्को और नोकिया सहित BSNL और 4 अग्रणी वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनियों के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। श्री सिंधिया ने कहा कि ये सहयोग डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप उद्योग अकादमिक साझेदारियों के जरिए नवाचार, उद्यमशीलता तथा डिजिटल सशक्तिकरण को बढ़ावा देने संबंधी सरकार की वचनबद्धता को दर्शाता है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो एक नया सूर्योदय, जहां देश के मानव संसाधन को नया प्रशिक्षण विश्व स्तरीय कंपनीज के द्वारा दिया जा रहा है और इसके आधार पर हमारे देश के नौजवानों को विश्व के अनुसंधान नवाचार का भाग होने का केवल मौका नहीं मिलेगा पर इसका नेतृत्व करने का मौका मिलेगा।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम द्वारा आयोजित देशभक्ति फिल्म महोत्सव आज से नई दिल्ली में शुरू हो गया है। ये महोत्सव स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत 13 अगस्त तक सिरी फोर्ट ऑडिटोरियम में आयोजित किया जा रहा है। 3 दिवसीय महोत्सव का उद्देश्य लोगों में देशभक्ति की भावना को जगाना है। केंद्रीय सड़क परिवहन तथा राजमार्ग राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने भी आज नई दिल्ली में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत तिरंगा यात्रा में हिस्सा लिया। लद्दाख में देशभक्ति की भावना जगाने और राष्ट्रीय ध्वज फहराने को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान हर घर तिरंगा के अंतर्गत कल मनोरम जांगला पर्यटक शिविर स्थल पर तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। स्थानीय पर्यटन संस्थाओं ने कार्यक्रम में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया। उधर असम में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत नागरिक और सरकारी संस्थान पूरे राज्य में नियमित रूप से रैलियों सहित विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। राज्य सरकार ने सभी सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों तथा कार्यालयों से हर घर तिरंगा अभियान में भाग लेने का अनुरोध किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में कुत्तों के काटने और रेबीज के खतरे को नियंत्रित करने के लिए आवारा कुत्तों को तुरंत पकड़कर उनकी नसबंदी करने और उन्हें आश्रय स्थलों में स्थानांतरित करने के कड़े निर्देश जारी किए हैं। न्यायालय ने चेतावनी दी है कि इस अभियान में बाधा डालने वाले किसी भी व्यक्ति या समूह पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। न्यायालय ने कहा है कि आवश्यकता पड़ने पर अधिकारियों को बल प्रयोग करने की भी अनुमति है। न्यायालय का ये निर्देश बच्चों पर आवारा कुत्तों के हमलों की रिपोर्टों पर आधारित एक स्वतः संज्ञान मामले में आया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने घोषणा की है कि ऑस्ट्रेलिया सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र में फलस्तीन को देश के रूप में औपचारिक मान्यता देगा। ये ऑस्ट्रेलिया की विदेश नीति में महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है। ऑस्ट्रेलिया का यह निर्णय फ्रांस, ब्रिटेन और कनाडा जैसे देशों के विचार के अनुरूप है। इन देशों ने भी फलस्तीन को मान्यता देने का संकेत दिया है। इसका उद्देश्य पश्चिम एशिया में 2 देशों के समाधान की दिशा में अंतर्राष्ट्रीय गति को बढ़ावा देना है।
Australia will recognise the state of Palestine. Australia will recognise the right of the Palestinian people to a state of their own, predicated on the commitments Australia has received from the Palestinian Authority. We will work with the international community to make this right a reality.
मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, सिक्किम और उत्तराखंड में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। एक रिपोर्ट।
विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार और पूर्वी मध्य प्रदेश में भी तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। इसी प्रकार की स्थिति हरियाणा, चंडीगढ़, कर्नाटक, केरल, माहे, पंजाब, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी रहने की संभावना है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, झारखंड और बिहार में तेज हवाओं और बिजली कड़कने के साथ गरज के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में दिन में तेज बारिश की संभावना है। भानु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में अंगदान एक नया जीवन विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। इसमें राष्ट्रीय अंग और उत्तक प्रत्यारोपण संगठन की संयुक्त निदेशक शाइनी सुमन प्रधान तथा राष्ट्रीय नेत्र बैंक के प्रभारी अधिकारी तथा भारतीय नेत्र बैंक संघ के महासचिव डॉ राजेश सिन्हा भाग लेंगे। रात 9:30 बजे के बाद हमारे इन टेलीफोन नंबरों पर संपर्क किया जा सकता है। नंबर है 011-23-71-7117। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में सांसदों के लिए 184 बहुमंजिला फ्लैटों का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने इसे एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना का प्रतीक बताया। बिहार में संशोधित मतदाता सूची और अन्य मुद्दों पर संसद में गतिरोध जारी। भाजपा ने झूठ फैलाने और चुनावी प्रक्रिया के खिलाफ निराधार आरोप लगाने के लिए कांग्रेस की आलोचना की। और मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।